साध्य उसे नहीं कहते जिसकी प्राप्ति न हो, साध्य उसे कहते जिसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन साध्य की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है और साधना की अभिव्यक्ति प्राप्ति न हो, साध्य उसे कहते जिसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन साध्य की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है और साधना की अभिव्यक्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। अतः मानव को सत्संग करना चाहिए। जो काम सत्संग के द्वारा हो सकता है वो किसी और प्रकार के द्वारा हो ही नहीं सकता, कारण कि आप विचार करके देखें कि जीवन का जो सत्य है उसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो साधना का उदय नहीं होगा, और जब तक साधना जीवन में उदय नहीं होती तब तक साधन और जीवन एक नहीं होता और साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हर भाई को हर बहन को, चाहे वो किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी देश के हों, सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? जाने हुए असत का त्याग, सुने हुए सत्य को स्वीकार करना। अब जाना हुआ सत्य क्या है? जितने भाई बहन बैठे हैं सबसे पूछा जाए कि जो मिला है जिस किसी को शरीर रूप में, व्यक्ति रूप में, वस्तु रूप में, योग्यता रूप में, सामर्थ्य रूप में, वो सदैव रहेगा? जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, ये बैठना क्या सदैव रहेगा? तो सब कहेंगे नहीं रहेगा। तात्पर्य क्या निकला? कि मिला हुआ जो होता है, जो मिलता है वो अलग होता है, ऐसा विधान है, और जो अलग होता है वो अपना नहीं होता, वो अपने लिए नहीं होता, उसकी सेवा की जा सकती है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसको अपना नहीं माना जा सकता, अपने लिए नहीं माना जा सकता। आप कहें कैसे? थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए। जब मिला हुआ अलग होता ही है तो अपना मानने से लाभ क्या? मिले हुए को अपना मानने का परिणाम ही होता है कि वो मिला हुआ तो रहता नहीं, उसकी ममता रह जाती है, उसकी कामना रह जाती है। तो वस्तु चली गई और ममता बनी रही, व्यक्ति चला गया और ममता बनी रही, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, तो हानि, और हानि बहुत बड़ी होती है। वस्तुओं की ममता से लोभ की उत्पत्ति हो जाती है, व्यक्तियों की ममता से कामना की उत्पत्ति हो जाती है, मोह की उत्पत्ति हो जाती है, तो अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है। अपना मानने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मिले हुए शरीर को, मिली हुई योग्यता को, मिली हुई सामर्थ्य को अपना नहीं मानना चाहिए, अपने लिए नहीं मानना चाहिए। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए कि हम जो हमें जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो आप बड़ी सुगमता पूर्वक, बड़ी सुगमता पूर्वक निर्विकारता को प्राप्त कर सकते हैं, यानी निर्मोहता को प्राप्त कर सकते हैं, निर्लोभता को प्राप्त कर सकते हैं, निष्कामता को प्राप्त कर सकते हैं, निर्भयता को प्राप्त कर सकते हैं, समता को प्राप्त कर सकते हैं, अनेक निर्विघ्न आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या कि जब आप इस सत्य को स्वीकार करें कि जो मिला हुआ है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका सदुपयोग नहीं करना है या उसकी सेवा नहीं करना है, मिले हुए व्यक्तियों की सेवा करना है, मिली हुई वस्तु योग्यता आदि का सदुपयोग करना है। तो मिली हुई वस्तु योग्यता आदि का सदुपयोग तभी हो सकता है जब होने अपना न माने अपने लिए न माने। जब मनुष्य किसी वस्तु को अपना मान लेता है, अपने लिए मान लेता है, तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। और जब मिली हुई वस्तु का योग्यता का सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता, जायज इस्तेमाल नहीं होता, तब जीवन में अकर्तव्य आ जाता है, कर्तव्य नहीं रहता। कर्तव्य का मतलब ही इतना है कि जिस किसी को जो कुछ मिला है उसका वो सदुपयोग करे, उसका वो जायज इस्तेमाल करे। तो मिले हुए के सदुपयोग करने से मिले हुए का संबंध भी टूट जाता है और मनुष्य करने के राग से मुक्त भी हो जाता है। मिले हुए का संबंध टूटने से मौजूद किसे संबंध हो जाता है और करने का राग निवृत्त होने से विश्राम प्राप्त हो जाता है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि भाषा आपकी समझ में आ रही है, कोई कठिनाई तो नहीं मालूम हो रही, सुनाई दे पाए ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मिले हुए के सदुपयोग से उसकी उसका संबंध टूट जाता है और हम करने के राग से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, करने से जो कुछ मिलता है वो अपने काम नहीं आता, वो शरीर के काम आता है, परिवार के काम आता है, समाज के काम आता है, अपने काम नहीं आता। आप देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हुए, लेकिन क्या कोई ऐसा आविष्कार आज तक आपने सुना कि जो आपको स्वाधीन बना दे, जो आपको अमर बना दे? सुना कभी? क्या रहा है? नहीं सुना। तो मिला हुआ चाहे आप खेत का उपजा हुआ अन्न हो, चाहे फैक्ट्री की बनाई हुई वस्तु हो, वो शरीर के काम आती है, अपने काम नहीं आती। हम शरीर की जरूरत को अपनी जरूरत कहकर और अपने को पराधीन बना लेते हैं, लेकिन मिला हुआ सदैव तो रहता नहीं। इसलिए ये सीधी सी बात है, ये जीवन का सत्य है कि हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, किसका है? परिवार का है, समाज का है, संसार का है, अपना नहीं है। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मिली हुई वस्तु को, मिली हुई योग्यता को अगर आप परिवार के लिए माने, समाज के लिए माने, संसार के लिए माने, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वस्तुओं के द्वारा परिवार, समाज और संसार की सेवा की जा सकती है। तो सेवा सामग्री है जो मिला है, तो फिर अपने लिए क्या है? ये प्रश्न पैदा होता है जीवन में कि मिली हुई योग्यता भी अपने लिए नहीं, मिली हुई सामर्थ्य भी अपने लिए नहीं, मिली हुई वस्तु भी अपने लिए नहीं, तो फिर अपने लिए क्या है? तो अपने लिए जो है सो अपने ही में है, वो अपने ही में है। तो अब प्रश्न होता है कि अपने लिए है तो अपने ही में है, तो उसकी हमें प्राप्ति कैसे हो? तो उसकी प्राप्ति होगी तब जब आप अपने को अपने में संतुष्ट करेंगे तब। और अपने को अपने में संतुष्ट कैसे करेंगे? जब मिले हुए का सदुपयोग करेंगे तब। और मिले हुए का सदुपयोग कैसे करेंगे, जब उसे अपना न मानेंगे अपने लिए न मानेंगे। देखिए ये जीवन का जो सत्य होता है वो किसी मजहब की बात नहीं होती, वो किसी इज्जत की बात नहीं होती, वो सभी की अपनी बात होती है। आप कहें कैसे, आप विचार करके देखिए, अगर आप मिले हुए को आप अपना मान लें कि मान लें कि शरीर अपना है तो क्या आपका हो जाएगा, समय आपके साथ बना रहेगा क्या रहा है, क्या आप सदैव शरीर साथ बने रहेंगे जी? लेकिन अपना मानने से मोह में आबद्ध हो जाएंगे कि नहीं क्या रहा है, तो मोह में आबद्ध हो जाए और शरीर हमसे छूट जाए तो कष्ट होगा कि आराम मिलेगा। ऐसे ही हम वस्तु के लोभ में आबद्ध हो जाए, वस्तु हमसे अलग हो जाए तो उसे कष्ट होगा कि आराम मिलेगा। अगर अपना न माने तो शरीर के सदुपयोग से क्या परिवार की सेवा नहीं हो सकती, समाज की सेवा नहीं हो सकती, संसार की सेवा नहीं हो सकती? तो मिले हुए शरीर को हम अपना माने ये बात सच्ची बात होती है कि मिले हुए शरीर के द्वारा जिसकी चाहे उसकी सेवा करें ये ठीक बात होती है क्या रहा है? यानी आपको कौन सी बात सच्ची बात होती है, कौन सी बात आपको मालूम होती है ठीक है, आप अपने द्वारा सोचिए। देखिए मानव शासन की प्रणाली में जो जीवन का सत्य है उसी को बताने का प्रयास किया है, उसी का संकेत किया है। तो जब आप ही जानते ही हैं कि मिले हुए शरीर के साथ हम सदैव नहीं रह सकते, तो शरीर के रहते हुए भी क्या हम शरीर के संबंध से, शरीर की आवश्यकता से फ्री नहीं हो सकते क्या रहा है? आज एक भाई आए हमसे पूछने लगे, स्वामी जी हमको मुक्ति चाहिए तो कैसे मिलेगी? मैंने कहा मुक्ति तो तुमको तुम्हारे ही ज्ञान से मिलेगी। कि मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाहता हूं, जो तुम्हारा अपना ज्ञान है उसी से तुम्हें मुक्ति मिले। मुक्ति का मतलब क्या है? शरीर के रहते हुए हम शरीर की जरूरत से फ्री हो जाए, मुक्त हो गए। जो शरीर की जरूरत से फ्री हो जाएगा उसे किसी और की जरूरत अनुभव होगी क्या, क्या रहा है ये? नहीं होगी। ये मैं खाली इसलिए, मैं बेपरा आदमी हूं ना तो मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि मेरी भाषा आपके कानों तक ठीक पहुंचती है कि नहीं। यानी शरीर की जरूरत से फ्री होना ही मुक्त होना है, और कोई मुक्ति होगी हमको मालूम नहीं। लेकिन इस मुक्ति का अनुभव है जीवन में कि मनुष्य चाहे तो शरीर की जरूरत से अपने को फ्री कर सकता है और शरीर रह सकता है जब तक उसको रहना है, और शरीर की जरूरत से अपने को फ्री न करे पर करता रहे तो क्या वो शरीर को सदैव रख सकता है क्या रहा है? कभी नहीं रह सकता। अच्छा भाई ये बात हमारे लिए है कि सभी के लिए है? अच्छी तो बताओ भाई, कोई पढ़ा लिखा रख लेगा क्या तो वे पढ़ा नहीं रख पाएगा? बोलो जैसे वाला शरीर को रख लेगा? अच्छा बड़ा बड़ा वैज्ञानिक रख लेगा जी? कोई नहीं। ये यूनिवर्सल कानून है कि नहीं? ये आपके जीवन का सत्य है कि नहीं? आप विचार कीजिए, हम चाहे आप चाहे कोई चाहे, पढ़ा लिखा हो बेपढ़ा लिखा हो, धनी हो निर्धन हो, मजदूर हो मिल ऑनर हो, मामूली चपरासी हो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लेकिन ये जीवन का सत्य सबके लिए समान है कि इसमें कोई फर्क है? सबके लिए समान है। तो सत्य कहते ही उसको है जो सबके लिए समान हो, उसी को सत्य कहते हैं। तो अब हमारे आपके सामने ये प्रश्न पैदा हुआ, तो ये प्रश्न पैदा हुआ कि हम जिस शरीर के साथ सदैव नहीं रह सकते, जिन वस्तुओं के साथ सदैव नहीं रह सकते, जिस परिवार के साथ सदैव नहीं रह सकते, जिस समाज के साथ सदैव नहीं रह सकते, उस समाज को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। भैया देखो, इसमें कोई कठिनाई है क्या? अगर हम कहें कि आप शरीर की सेवा कीजिए तो आप कह सकते हैं हमारे पास शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम ये कहें हमको कोई हानि मत पहुंचाइए, तो इसको आपको कौन सी योग्यता चाहिए भैया? तो मैं सब किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये जो जीवन का सत्य है। क्यों? हम जानते हैं कि हमें कोई हानि न पहुंचाए। देखिए, एक बार एक बड़े विद्वान महापुरुष से मुझसे भेंट हुई और वो मुझसे पूछने लगे कि बताओ शान, अज्ञान किसे कहते हैं? अब मैं कहा बेपड़ा आदमी, मैंने साहब आप ही बताइए, ये मैं सागर आदमी की बात नहीं कहता हूं। मैं तो मान लेता भाई मैं बेपड़ा हूं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा जानते होंगे। तो कहने लगे अज्ञान इसी को कहते हैं जो लोग ये मान लेते हैं कि भगवान व्यास में ज्यादा ज्ञान था, हम में कम ज्ञान है। सुमन भाई,
हाँ जी,
बड़ी गंभीर बात। ये बड़े विद्वान महापुरुष ने कहा, जो वेदांत के अद्वितीय पंडित थे अच्युत महाराज जी के नाम से काशी से निकली, अच्युत मुनि ने कहा तुम्हें मैं चौंका पहले तो, फिर मैंने सोचा इस बात तो ठीक मालूम होती है, तो ज्ञान योग्यता का नाम नहीं है। इसकी योग्यता और चीज है, ज्ञान और चीज है। योग्यता एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की शक्ति है, ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से आप ये अनुभव करते हैं कि कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझको हानि न पहुंचाए। ये आपकी सीखी हुई बात है कि आपकी जानी हुई बात है? बोलो, क्या आपकी जानी हुई बात है कि सीखी हुई बात है? जानी हुई बात है ना। अच्छा, आप किसी बड़े भारी विद्वान से पूछो धर्म क्या है, तो कहेगा अहिंसा परमो धर्म, यही नहीं कहेगा? यानी किसी को तकलीफ मत दो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी के विकास में रुकावट मत डालो, किसी की